ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 22 फरवरी 2026 के लिए है। विषय मन स्वर्णपथ यशाया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। उत्तरदायी अध्ययन रोमियो करंथियों। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सिद्धर्ष न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सौ बुद्धि के साथ अपने को समझे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। पाठ उपदेश बाइबल में से फिलिपियों। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढारस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुले होने को अपने वश में रखने की वास्तु न समझा, वरुण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में प्रगत होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ सूली की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारो हुओं को उसके पास लाए और उसने उनको ठीक किया। मरकस। और वो झील के पार ग्रासिनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور کوئی اسے سنگلوں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور سنگلوں سے باندھا گیا تھا۔ پر اس نے سنگلوں کو توڑ دیا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے وش میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لگاتار رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے کو پتھروں سے گھائل کرتا تھا۔ وہ یشو کو دور ہی سے دیکھ کر دوڑا اور اسے پرینام کیا اور اونچے شبد سے چلا کر کہا، ہے یشو مہا پردھان پرمیشور کے پتر، مجھے تجھ سے کیا کام؟ میں تجھے پرمیشور کی شپتھ دیتا ہوں کہ مجھے پیڑا نہ دے، کیونکہ اس نے اسے کہا تھا، ہے اشدھ آتما اس منشے میں سے نکالا۔ اس نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام سینا ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ اور اس نے اسے بہت بنتی کی، ہمیں اس دیش سے باہر نہ بھیج۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا جھنڈ چل رہا تھا، اور انہوں نے اس سے بنتی کر کے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے کہ ہم ان کے بھیتر جائیں۔ سو اس نے انہیں آگیا دی، اور اشدھ آتما نکل کر سوروں کے بھیتر چلی گئیں، اور جھنڈ جو کوئی 2000 کا تھا کھڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ اور ان کے چرواہوں نے بھاگ کر نگر اور گاؤں میں سماچار سنایا، اور جو ہوا تھا لوگ اسے دیکھنے آئے، اور یشو کے پاس آ کر وہ اس کو جس میں دشت آتمائیں تھیں ارتھات جس میں سینہ سمائی تھی کپڑے پہنے اور سچیت بیٹھے دیکھ کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے اس کا جس میں دشت آتمائیں تھیں اور سوروں کا پورا حال ان کو کہہ سنایا۔ بھجن سنہتا۔ پرمیشور ہمارا شرن ستھان اور بال ہے، سنکٹ میں اتی سہج سے ملنے والا سہائک۔ اس کارن ہم کو کوئی بھے نہیں، چاہے پرتھوی الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کے بیچ میں ڈال دیے جائیں، چاہے سمندر گرجے اور پھن اٹھائے اور پہاڑ اس کی باد سے کانپ اٹھیں۔ ایک ندی ہے جس کی نہروں سے پرمیشور کے نگر میں ارتھات پرم پردھان کے پوتر نواس بھون میں آنند ہوتا ہے۔ پرمیشور اس نگر کے بیچ میں ہے، وہ کبھی ٹلنے کا نہیں، وہ پھٹتے ہی پرمیشور اس کی سہایتا کرتا ہے۔ جاتی جاتی کے لوگ جھلا اٹھے، راجے راجے کے لوگ ڈگمگانے لگے، وہ بول اٹھا اور پرتھوی پگھل گئی۔ سیناؤں کا یہوہ ہمارے سنگ ہے، یعقوب کا پرمیشور ہمارا اونچا گڑھ ہے۔ آؤ یہوہ کے مہا کرم دیکھو کہ اس نے پرتھوی پر کیسا کیسا اجاڑ کیا ہے۔ وہ پرتھوی کی چھور تک لڑائیاں مٹاتا ہے، وہ دھنش کو توڑتا ہے اور بھالے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، اور رتھوں کو آگ میں جھونک ڈالتا ہے۔ چپ ہو جاؤ اور جان لو کہ میں ہی پرمیشور ہوں، میں جاتیوں میں مہان ہوں، میں پرتھوی بھر میں مہان ہوں۔ سیناؤں کا یہوہ ہمارے سنگ ہے، یعقوب کا پرمیشور ہمارا اونچا گڑھ ہے۔ کلسیوں۔ اور مسیح کی شانتی جس کے لیے تم ایک دہ ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے ہردے میں راجے کرے اور تم دھنیوادی بنے رہو۔ رومیوں۔ اور دھیرج اور شانتی کا داتا پرمیشور تمہیں یہ وردان دے کہ مسیح یشو کے انوسار آپس میں ایک من رہو، تاکہ تم ایک من اور ایک منہ ہو کر ہمارے پربھو یشو مسیح کے پتا پرمیشور کی بڑائی کرو۔ سو پرمیشور جو آشا کا داتا ہے، تمہیں وشواس کرنے میں سب پرکار کے آنند اور شانتی سے پاریپورن کرے، کہ پوتر آتما کی سمرتھ سے تمہاری آشا بڑھتی جائے۔ اب میں میری بیکر ایڈی دوارا کرسچن سائنس کی کتاب وگیان اور سواستھ شاستروں کی کنجی کے ساتھ کے سہا سمبندھی انش پڑھوں گا۔ وگیان اور سواستھ۔ انت من مناسک انو سے انت تک سبھی کو بناتا اور نینترت کرتا ہے۔ سوال، من کیا ہے؟ جواب، من ہی ایشور ہے، تروتی کا ناش کرنے والا مہان ستے ہے کہ پرمیشور اچھائی ایک ماتر من ہے، اور یہ کہ انت من کے وپریت جسے شیطان یا برائی کہا جاتا ہے، من نہیں ہے، ستے نہیں ہے، بلکہ بدھی یا واستوکتا کے بنا تروتی ہے۔ ایک ہی من ہو سکتا ہے، اور یدی نشور نے کسی کے من کا دعویٰ نہیں کیا اور کسی انے کو سویکار نہیں کیا تو پاپ اگیات ہوگا۔ हमारे पास एक मन हो सकता है अगर वो अनंत है। हम अनंतता की भावना को दफनाते हैं जब हम मानते हैं कि हालांकि ईश्वर अनंत है, इस अनंत में बुराई का स्थान है, क्योंकि बुराई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती जहां सभी स्थान ईश्वर से भरे हुए हैं। हम सर्वशक्ति मान्यता के उच्च संकेत को खो देते हैं जब ये स्वीकार करने के बाद कि ईश्वर या अच्छाई सर्वव्यापी या सर्वशक्ति है, हम अभी भी मानते हैं कि एक और शक्ति है जिसका नाम बुराई है। ये धारणा कि ईश्वर धर्मशास्त्र के लिए एक से अधिक मन से उतना ही खतरनाक है जितना के प्राचीन पौराणिक कथाएं और मूर्ति पूजक है। एक पिता, यहाँ तक के भगवान के साथ मनुष्य का पूरा परिवार भाई होंगे, और एक मन और उस ईश्वर या भलाई के साथ मनुष्य का भाईचारा प्रेम और सत्य से मिलकर बना होगा, और इसमें सिद्धांत और आध्यात्मिक शक्ति की एकता होगी जो दिव्य विज्ञान का घाटन करती है। एक से अधिक मन का माना गया अस्तित्व मूर्ति पूजा की मूल त्रुटि थी। इस त्रुटि ने आध्यात्मिक शक्ति की हानि, जीवन की आध्यात्मिक उपस्थिति की हानि को बिना किसी असमानता के अनंत सत्य के रूप में और प्रेम के नुकसान को हमेशा वर्तमान और सर्वभावमिक माना। ईश्वरायिक विज्ञान अमूर्त कठान की व्याख्या करता है कि निम्नलिखित स्पष्ट प्रस्ताव द्वारा एक मन है। यदि ईश्वर या अच्छाई वास्तविक है तो बुराई ईश्वर की अवांछितता असत्य है, और बुराई केवल असत्य को वास्तविकता देकर वास्तविक परिणत हो सकती है। भगवान के बच्चों के पास एक मन है। अच्छाई बुराई में कैसे ढल सकती है जब मनुष्य का मन ईश्वर कभी पाप नहीं करता है? पूर्णता का मानक मूल रूप से भगवान और मनुष्य थे। क्या ईश्वर ने अपने स्वयं के मानक को नीचे रखा है, और क्या मनुष्य पाप में गिर गया है? ईश्वर मनुष्य का निर्माता और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीश पूर्ण है। दिव्यायी विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर की अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वरी पूर्णता को व्यक्त नहीं किया, तो ये ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वर को व्यक्त नहीं किया। और फलसफा पूर्ण एक समय था जब देवता प्रसन्न थे, ये अकाई के बिना है। अगर मनुष्य ने पूर्णता खो दी है तो उसने अपने सिद्ध सिद्धांत दिव्य मन को खो दिया है। यदि मनुष्य कभी भी इस सिद्ध सिद्धांत या मन के बिना अस्तित्व में था, तो मनुष्य का अस्तित्व एक मैथिक था। चेतना साथ ही साथ क्रिया मन द्वारा शासित होते हैं। ईश्वर में है, जो कि सभी विज्ञानों के मूल और राज्यपाल से पता चलता है। ये दर्ज है कि एक बार यीशु ने एक बीमारी का नाम पूछा था, एक बीमारी जिसे आधुनिक लोग मानव भ्रंश कहते हैं। दानव या दुष्ट ने जवाब दिया कि उनका नाम भीड़ था। उसके बाद यीशु ने अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया और पागल आदमी को बदलकर ठीक कर दिया। अंजील ये बताते हुए दिखाई देती है कि यीशु खुद अशुद्धता को प्रकट होने और नष्ट करने का कारण बना। सभी बीमारी का कारण और आधार भय, अज्ञानता या पाप है। रोग हमेशा एक झूठी भावना से प्रेरित होता है जो मानसिक रूप से मनोरंजन करती है, नष्ट नहीं होती। रोग एक विचार की बाहरी छवि है। मानसिक अवस्था को भावतिक अवस्था कहते हैं। नश्वर मन में कुछ भी पोषित किया जाता है, क्योंकि शरीर शारीरिक स्थिति की नकल की जाती है। अथाह मन प्रकट होता है। अनंत प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, पराक्रम, ईश्वरीय और महिमा सारे स्थान को भर देती है। वो पर्याप्त है। मानव भाषा जो मौजूद है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा दोहरा सकती है। परम आदर्श मनुष्य उसके अनंत सिद्धांत प्रेम की तुलना में ना तो अधिक देखा और ना ही समझा जाता है। सिद्धांत और उसका विचार मनुष्य अस्तित्व और शाश्वत हैं। आत्मा मन के विज्ञान के माध्यम से कार्य करती है। मनुष्य को कभी भी जमीन जोतने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे मिट्टी से श्रेष्ठ बनाती है। इसका ज्ञान मनुष्य को मिट्टी, पृथ्वी और उसके वातावरण से ऊपर उठाकर सुचेतन आध्यात्मिक सिद्ध भाव और शाश्वत अस्तित्व की ओर ले जाता है। विज्ञान न केवल सभी बीमारियों की उत्पत्ति को मानसिक रूप से प्रकट करता है, बल्कि ये भी घोषणा करता है कि सभी रोग दिव्य मन से ठीक हो जाते हैं। इस मन को छोड़ कोई भी उपचार नहीं हो सकता है। हालांकि हम एक दावे या किसी अन्य साधन पर भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए मानव विश्वास या प्रयास का निर्देशन किया जाता है। ये नश्वर मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीमार को लाता है। जो कुछ भी अच्छा लगता है वो भावतिकता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति के माध्यम से बीमारों को वास्तव में ठीक नहीं किया जाता है। केवल सत्य, प्रेम और जीवन की क्रिया सिद्ध भाव दे सकता है। सत्य एक नया पुरानी बनाता है जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। क्रिश्चियन साइंस के तत्वों को बनाए रखें कि आत्मा ईश्वर है और इसलिए ये बीमार नहीं हो सकती। जिसे सामग्री कहा जाता है उसे बीमारी नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से कार्य करने का सारा कारण मन है। फिर सत्य और प्रेम की आंखें समझ के साथ अपनी जमीन थामे तो आप जीतेंगे। रोग के उद्दीपित या अनंत चरणों में अंधे और शांत प्रस्तुत करने की बजाय उनके खिलाफ विरोध में खड़े हों। इस विश्वास को समाप्त करें कि संभावना है कि आप एक ही असहनीय दर्द का सामना कर सकते हैं जिसे मन की शक्तियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता, और इस तरह आप शरीर में दर्द के विकास को रोक सकते हैं। भगवान का कोई भी कानून इस परिणाम में बाधा नहीं डालता है। एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक की दवा मन है, ईश्वर सत्य है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।